अरे भाई, मैं चाहूंगा कि दो तीन नाम जैसे हसन मंजर साहब हैं या असद मोहम्मद खान साहब हैं, और फिर एक जो कि बहुत मशहूर और जिन्होंने बहुत लिखा, इंतसार हुसैन साहब, उनके बारे में भी थोड़ा सा आप हमें बताइए, उनके उनके काम के बारे में।
जी, इनमें इंतजार हुसैन साहब का नाम तो इसलिए खसूसियत का हामिल है कि जब हम तरक्की पसंदों का जिक्र करते हैं या प्रेमचंद, कृष्ण चंद्र वगैरह का जब हम जिक्र कर रहे थे, तो उनके पैरेलल ये सिलसिला चल रहा था इंतजार हुसैन की कहानियों का। इन्होंने सन 60 की दहाई में शोहरत हासिल की कहानियों की वजह से। ये कॉलम निगार भी थे और नसर निगार भी थे, लेकिन इनकी कहानियों में पहली दफा उर्दू अदब में एक अलामती अंदाज इख्तियार किया गया। इंतजार हुसैन और अनवर सज्जाद दो नाम थे उस वक्त जो रवायती यानी तरक्की पसंद कहानी के पैरेलल जो चल रहे थे अलामत निगारी के हवाले से। कि इंतजार हुसैन की तमाम अलामतें तो हमारे मजहब से या हमारी रवायत से आती थी, जबकि अनवर सज्जाद जो थे वो जदीद यूरोपी अदब से इस्तफादा करते थे और उन्होंने काफका को और दीगर यूरोपी कहानी निगारों को पढ़ा था, और वो उनकी टेक्निक और उनके हरबे इस्तेमाल करते थे उर्दू कहानियों में, जो उर्दू फिक्शन में बहरहाल एक नया तजुर्बा था। जबकि इंतजार हुसैन दास्तान की रवायत को लेके आगे चल रहे थे और वो कदीम दास्तानों के माहौल को जदीद उर्दू अफसाने में ढालने की कोशिश कर रहे थे। इस सिलसिले में उन्होंने कुरानी किस्से भी अपनी कहानियों में इस्तेमाल किए, और उनकी शाहकार कहानी और नुमाइंदा कहानी आखिरी आदमी है, जिसमें बनी इसराइल के बंदर बन जाने के वाकये को एक अफसाने की सूरत में पेश किया गया है। जाहिर है कि अलामती सतह पे इंसान का बंदर बन जाना जो है वो एक तमाम माशरती इन्हातात और जवाल की अलामत है, और जो आला अकदार को छोड़ के और जवाल पजीर अकदार को सीने से लगा लेने का अमल है, उसकी डिपिक्शन है। लेकिन इंतजार हुसैन ने अपने अफसाने आखिरी आदमी में उसको इस टेक्निक को कमाल तक पहुंचाया। इसको बाद में रेडियो ड्रामे की शक्ल में भी पेश किया गया और टेलीविजन पे भी करने की कोशिश की गई, अगरचे वहां कामयाबी हासिल ना हो सकी। जबकि अनवर सज्जाद ने अपना तमसीली अंदाज आखिर तक जारी रखा, और वो उन्होंने बजाय देसी जराए इस्तेमाल करने के, उन्होंने ज्यादा वलायती जराए इस्तेमाल किए अपनी कहानियों को पेश करने के लिए, यानी टेक्निक के वो तजुर्बे जो यूरोपियन कहानी निगार अपनी कहानियों में कर चुके थे, उनको उन्होंने उर्दू में आजमाया, और बाद सूरतों में तो बहुत कामयाबी से आजमाया। तो यूं देखा जाए तो ये दो अलामत निगार बिल्कुल दो मुख्तलिफ और मुखालिफ समतों में काम कर रहे थे। इंतजार हुसैन अपने दास्तानी अदब को आगे लेके चल रहे थे, और जो अनवर सज्जाद थे वो यूरोप के जो अलामती तजुर्बात थे वो उनसे इस्तफादा कर रहे थे।
असद मोहम्मद खान साहब की एक कहानी है, बासौदे की मरियम, और मेरी बड़ी पसंदीदा कहानी है। असद मोहम्मद खान साहब के काम के बारे में आपकी क्या राय है?
मैं समझता हूं कि जो जिस रवायती कहानी का हमने जिक्र किया था जो 1950 के अशरे में शुरू हुई और जिसको मंटो, इसमें चुगताई, बेदी, प्रेमचंद और गुलाम अब्बास ने आगे बढ़ाया, उस रवायत को 21वीं सदी तक लाने और 21वीं सदी में ला के उसको आगे ले जाने का मुश्किल फरीजा जो है वो अगर किसी ने अंजाम दिया वो तो वो असद मोहम्मद खान है। उन्होंने उस कहानी को तमाम तर बुनियादी लवाजमात के साथ, जो एक रवायती कहानी के लवाजमात थे, मतलब इन्होंने कहीं एब्स्ट्रैक्ट किस्म की अलामत पसंदी से काम नहीं लिया, कहीं पे इन्होंने दास्तानी जुबान इस्तेमाल नहीं की, इन्होंने बिल्कुल नई जुबान, जदीद मुहावरा इस्तेमाल करते हुए वही किरदार, इसी मुआशरे के किरदार सामने रखते हुए उनको इस अंदाज में पेश किया कि मैं समझता हूँ कि रवायती कहानी का जो स्टाइल था, जो 50s में मुतारुफ हुआ था, उसको एक नया रंग देके और उसको 21वीं सदी में खड़ा करने के काबिल अगर किसी ने बनाया तो वो असद मोहम्मद खान है। और इनकी ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है कि ये इन्होंने रवायती कहानी के महल को गिरने नहीं दिया, بلکہ اس میں کچھ ایسے ستون انہوں نے اپنے فن کے کھڑے کر دیے کہ وہ عمارت جو ہے وہ پھر سے عالیشان عمارت کے طور پہ, ایک عالیشان سٹرکچر کے طور پہ پھر سے کھڑی ہو گئی. اور اس بات کے لیے اردو ادب کو ان کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے جو روایتی سٹرکچر تھا کہانی کا, اس میں رہتے ہوئے انہوں نے نئے مضامین پیدا کیے اور نئی کہانیاں ہمیں دی.
بہت بہت شکریہ عارف بھائی, اور آپ نے بہت اچھا ایک اجمالی جائزہ پیش کیا سارے اردو ادب کا.